ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है कि कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के चरण कमलों में सभी मेरे प्रिय मित्रों के बीच में अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने के लिए। यदि भी क्षमता तो नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। अब सबके कृपा की याचना करते हैं जिससे कि प्रामाणिक ब्रह्म मध्य गौड़ी परंपरा के आचार्यों की टीकाओं के अनुसार कुछ प्रस्तुत कर सकें। आपकी प्रसन्नता और मेरी शुद्धि के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद नवम अध्याय 13 और 14वां श्लोक, चतुर्दशवां श्लोक। 13वां श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 14वां श्वेत पट पे है, उसको आप दोहरा सकते हैं। भस्मी भूतांग संगेन स्वर्यात सागरात सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं सेवन्ते यद्धृतव्रताः। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ संपर्क होने से सागर सगर महाराज के पुत्र स्वर्गलोक चले गए, अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। अब 14वां श्लोक जो भी लिखा है। न ह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धुन्या यत् इहोदितम् अनंत चरणां भोज प्रसूताया भवच्छिदः। नह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धुन्या यद् इहोदितम् अनंत चरणां भोज प्रसूताय भवच्छिदः। नह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धुन्या यत् इहोदितम् अनंत चरणां भोज प्रसूताया भवच्छिदः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की ना, नहीं ही निस्संदेह एतत् वह, माफ करना, यह परम चरम आश्चर्यम आश्चर्यजनक वस्तु स्वर्धुन्याः गंगा जल का यत् जो इहा यहां पर उदितम कहा गया है अनंत भगवान का चरण अम्भोज चरण कमलों से प्रसूतायाः निकलने वाले का भव छिदः भव बंधन से छुड़ाने में समर्थ। अनुवाद मेरे बात कृपया दोहराएं। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, अतएव वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसीलिए यहां पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। यह वास्तव में देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। यह गंगा जल में स्नान करने का प्रभाव है। सारे वैदिक शास्त्रों में गंगा में स्नान करने की संस्तुति की गई है। अतएव जो भी इस पथ को ग्रहण करेगा वह सारे पाप फलों से पूर्णतया छूट जाएगा। इसके ज्वलंत प्रमाण महाराज सगर के भस्मीभूत पुत्र हैं जो गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। अध्याय का शीर्षक है अंशुमान अथवा अंशुमान, हिंदी में बोलेंगे तो संस्कृत में अंशुमान की वंशावली। तो वंशावली कुछ इस प्रकार है कि सम्राट सगर थे, सगर के पुत्र 60,000 जो भस्मीभूत हो गए थे कपिल मुनि के प्रति अपराध करने की वजह से। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ शाप दिया या हुम बोला या दृष्टि किया, कुछ नहीं। बस अंग्रेजी में कहावत है बेक्ड इन इज ओन सॉस, कुक्ड इन इज ओन सॉस। इसी प्रकार खुद की गर्मी से, उनके अपराध से, जन्य गर्मी से खुद जल गए। जैसे उदाहरण आता है जयदेव गोस्वामी के संदर्भ में, उनके उनके जीवन में ऐसा आता है कि उनके प्रति कुछ चोरों ने, डाकों ने अपराध किया था। वापस जब आए थे वो वेश बदल कर, यद्यपि उनको समझ गए थे जयदेव गोस्वामी कि वो कौन है, फिर भी उन्होंने उनकी मदद करी। महाराज से उनको धन दिलाया और प्रहरी के साथ उनको वन पार करने के लिए भेजा। लेकिन वो इतने, व्यावहारिक भाषा में बोलेंगे तो बदमाश निकले, कि उन्होंने बताया कि ये जो जयदेव गोस्वामी है ना, ये एक्चुअली हमसे मदद ले रहा था और किसी गलत तरीके से वो धन बना रहा था और महाराज को जो है एक प्रकार से मूर्ख बना रहा था। तो क्योंकि हम इस सत्यावस्था को जानते हैं, उनके उनको जो दंड दिया गया था उस दंड देने के लिए हम गए थे, तो अभी उससे वो बच गया और वो महाराज की सेवा में है और अपने आप को बहुत सत्यशील दिखा रहा है। और क्योंकि हम इसकी सत्यावस्था जानते हैं कि ये ढोंगी है, इसलिए हमसे बचने के लिए महाराज से हमको धन दिला रहा है और हमें वन पार करा रहा है। तो ये सुनते ही, और एक कलयुग की बात है, गौरांग महाप्रभु के आने के मुश्किल से दो ढाई सौ साल पहले की बात है, धरती फट गई और बीच में वो लोग गिर गए, वो चोर, उन चोरों को धरती ने खा लिया। तो डर लगता है वो सुन के तो ज्यादा दूर नहीं, हम भी बोलते हैं हम भी गौरांग महाप्रभु के लीला के भाग हैं करके, तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वैष्णव अपराध, विशेष करके तो भगवान के विस्तार हैं स्वयं कपिलदेव, उनके प्रति अपराध करने से सगर के पुत्र 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। और उनके उनका एक और भाई था असमंजस, सही नाम था, उसका स्वभाव भी ऐसा ही था। तो फिर उसने तो कुछ किया नहीं, बाद में उसको राजगद्दी दी नहीं गई, ऐसा कुछ बताते हैं शास्त्र। फिर उनके पुत्र थे अंशुमान, जिनके वंशावली की यहां पे बात की गई है। क्योंकि कपिल मुनि के पास जब गए तो अंशुमान को उन्होंने यज्ञ का अश्व लौटाया, जिसको वापस लेने के लिए सगर के 60,000 पुत्र गए थे। और जब ना मिला तो कपिल मुनि के प्रति उन्होंने अपराध किया कि चिल्लाया, उनका तंग किया कि उन्होंने चोरी करी इस घोड़े की, जबकि बताया जाता है कि हमेशा की तरह इंद्र का ही काम था वो। तो अंशुमान ने याज्ञाश्व को लेकर सगर तक पहुंचाया, लेकिन अपने पूर्वजों को, अपने क्योंकि वो उनके भतीजे थे, अपने पूर्वजों को वापस शरीर प्राप्त कराने में वो असफल हुए क्योंकि उनको बताया गया था कि गंगा जी को स्वर्ग लोकों से जब नीचे लाया जाएगा तो उनके स्पर्श मात्र से सगर के पुत्र जो है पुनर्जीवित हो सकते हैं या उनको पुनः शरीर प्राप्त हो सकता है। और अंशुमान भी असफल हुए, उनके पुत्र दिलीप भी असफल हुए। हमें याद रखना चाहिए ये सब बहुत ही महान राजा हैं क्योंकि इनके वंशावली में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ का एक अर्थ यह भी है जो कि अटल परिश्रम करता है, जो कि महान प्रयत्न करता है। शास्त्र में एक शब्द भी आ गया भगीरथ प्रयत्न, तो इसलिए क्योंकि भगीरथ ने तपस्या करी जिससे कि गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी के स्पर्श मात्र से उसके पूर्वज उसके उसके क्या बोलते हैं उनको परदाता तो नहीं, उनके अंशुमान के उसके पिताजी के चाचा थे, उसको जो भी अपने अपने भाषा में समझ लीजिए, ग्रैंड अंकल्स, उनको पुनर्जीवित किया क्योंकि उनको कई लोग बोलते हैं कि प्रेत की योनि प्राप्त हुई थी, भूत योनि प्राप्त हुई थी, तो उसमें से उनको मुक्त कराया। तो गंगा जी की क्षमता के बारे में इन दो श्लोकों में बताया गया और उनकी महानता के बारे में यहां पर बताया गया कि भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ संपर्क होने से सगर महाराज के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। अभी तो हम लोग शुद्ध भक्ति में है इसलिए स्वर्गलोक चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हरि बोल भी नहीं बोलते स्वर्गलोक ठीक है विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते। आगे बताया गया अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं, तो उनका क्या कहा जाए जो सिर्फ उनके स्पर्श मात्र से इनको स्वर्गलोक की प्राप्त हुई थी, तो संकल्प लेकर गंगा मैया की जो पूजा करते हैं उनका क्या कहा जाए, उनको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, वो कितने लाभान्वित होंगे। और आगे बताया गया ऐसे भक्तों का मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है, यू कैन ओनली इमेजिन द बेनिफिट दैट दे आर डिराइविंग बाय टेकिंग बाथ इन द गेंजेस। टेकिंग बाथ इज एन इस्कॉन यूसेज, बाय बेदिंग इन द गेंजेस, स्नान लेना, इसलिए टेकिंग बाथ, फोटो लेना, टेकिंग फोटो, सो लाइक दैट, बट दिस इज बेदिंग। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती है, अतएव वे मनुष्य को भवबंध से मुक्त करने में सक्षम है। निम्न गाना मेथा गंगा देवाना मच्युतो यथा वैष्णवाना मेथा शंभु पुराणानाम इदंततम। तो निम्न गाना मतलब जो बहने वाले वस्तुएं हैं या उनमें से प्रमुख है, सबसे महान है, सर्वोच्च है गंगा। लेकिन वो महान क्यों है, क्योंकि वो भगवान अच्युत के, भगवान अनंत के चरण कमल से उनके अंगूठे का स्पर्श क्योंकि हुआ है और उसका स्नान क्योंकि गंगा जी ने किया है और उसके फलस्वरूप बताया जाता है कि उनके चरण कमलों का जो कुमकुम है उससे मिश्रित होकर एक प्रकार से पिंकिश कलर की बनी गंगा जी, और इसलिए वो सक्षम बनी कि सबके पापों को वो दूर कर सके। एक महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी जरूर है, जबकि मैं पॉइंट तक पहुंचता हूं तब तक कुछ बोलता हूं, कि गंगारा परस हैले पश्चाते पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करे जेतो मार्गन। जो गंगा के स्पर्श मात्र से स्नान करने से बाद में पावन होता है व्यक्ति, शुद्ध होता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे हैं कि उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो सकता है, ये उनका महान गुण है। ये तुम्हार गुण वैष्णव के बारे में बताया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि गंगा के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में महान एक संवाद होता है स्वयं श्री भगवान का, ये आता है, हो सकता है इसके पहले क्लासेस में किसी ने बताया भी होगा लेकिन मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट बताने के लिए। तो गोलोक आरोहणम करके एक संदर्भ आता है कृष्ण जन्म खंड में 129वें अध्याय में ब्रह्म वैवर्त पुराण के, जिसमें कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निज धाम लौट रहे हैं। तो ये भगवान नारायण और नारद मुनि के साथ एक सामान्य संवाद हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष संवाद है जो कि स्वयं भगवान से गंगा जी प्रश्न करती है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। भागीरथी उवाच, भागीरथ क्योंकि लाए थे इसलिए भागीरथी, और आते समय जानु मुनि के आश्रम में जानु द्वीप से गुजर रही थी तो उनके आचमन पात्र कमंडलू और बाकी भजन सामग्री को क्योंकि अस्त व्यस्त कर दिया गंगा जी ने, तो जानु मुनि ने, कुछ लोग बताते हैं कि कान से उनको पान कर लिया और फिर भगीरथ मुनि और बाकी देव देवताओं के प्रार्थना की वजह से कुछ संदर्भ में ऐसे बताया जाता है कि कान से गंगा जी को निकाला, कुछ बताते हैं कि अपने थाई से जंगा बोलते हैं ना उसको, वहां से निकाला झांग इन संस्कृत उरु, तो उरु से निकाला। तो इसलिए जानु मुनि के पुत्र पुत्री होने की वजह से जानवी, जानवी तट बने जग मन लोभा, और भगीरथ क्योंकि लाए थे इसलिए भागीरथी। तो भागीरथी उवाच, हे नाथा रमण श्रेष्ठा, राधिका रमण श्रेष्ठा, यासी गोलोकम उत्तमम, अब जबकि आप गोलोक की तरफ जा रहे हो, आपका गोलोक गमन हो रहा है, अस्माकम काकतिश्चात्रा, मेरा क्या होगा, गंगा जी पूछ रही है, भविष्यति कलौ युगे, कलयुग में मेरा क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा मेरा। तो भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कले पंच सहस्राणी वर्षाणि तिष्ठ भूतले, आप 5000 साल तक भूतल पर रहेंगे, इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। कुछ आचार्य बताते हैं कल्प वेद की वजह से है, क्योंकि वैसे तो बताया जाता है कि 10000 साल तक सुवर्ण युग चलेगा और 5000 साल तो हो चुके हैं गंगा जी के धरातल पर, 1900 ईस्वी तक 5000 साल हो चुके होते, तो बाकी 5000 साल और भी रहेंगी, तो कल्प भेद की वजह से ऐसा आचार्य बताते हैं कि 10000 साल रहेंगी। और उसके बाद बताया गया, पापनी पापिनो यानी तुभ्यम दास्यामि स्नानतः, जितने भी लोग हैं अपने पापों को निक्षेप करेंगे, डिपॉजिट करेंगे आपके अंदर स्नान करके। कलयुग में लोग थोक में पाप करते हैं, तो लोगों के पास बहुत सारे अवसर हैं पाप करने के लिए, हर कोई भी व्यक्ति अगर पाप करना भी नहीं चाहता उसको फिर भी पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, पूरा अवसर दिया जाता है कि वो पाप करें। और इसलिए बताया गया है कि पापनी पापिनो यानी तुभ्यम दास्यंति स्नानतः, तुभ्यम दास्यंति स्नानतः, तो जितने भी पापी हैं आपके अंदर अपने पापों को निक्षेप करेंगे। अब इसका निवारण क्या होगा, भगवान बता रहे हैं, मन मंत्रोपासक स्पर्शात भस्मीभूतानि तत्क्षण, सिर्फ उन भक्तों की दर्शन मात्र से जो कि मेरे मंत्र से उपासना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो मंत्रोपासना करते हैं उनके दर्शन मात्र से क्या हो जाता है, भविष्यंति दर्शनश्च स्नाना देव ही जानवी, वो व्यक्ति स्नान करेंगे या उनके चरण कमलों का जो स्पर्श होगा आपके जल के ऊपर, उससे जितने भी पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब देख सकते हैं यहां भी वही भस्मीभूत की बात चल रही है, इस श्लोक में भी उसी भस्मीभूत की बात चल रही है, इस श्लोक में भी भस्मीभूत होने की बात चल रही है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी उसी की बात चल रही है। भस्मीभूता भूतांग संगे न, भस्मीभूतांग संगे न, तो जो लोग भस्मीभूत हो गए थे सगर के पुत्र, उनके अंगों का जब संग हो जाता है गंगा मैया के जल से, तब पुनः श्रद्धया देवीम सेवन्ते वे दृढ़व्रता स्वर्याता अर्थात स्वर्गलोक चले गए स्वर्याता, और गंगा जी का एक नाम है स्वर्धुनी,
इस श्लोक में भी आता है स्वर ध्वनि गंगा के जल से। स्वर्गलोक में गंगा की, गंगा का एक नाम है स्वर ध्वनि। गम्याम गमयति इति गंगा, गम्याम गमयति इति गंगा, जो कि आकाश के मार्ग से प्रयाण करती है इसलिए उनका नाम गंगा। फिर उस पे धरती पे आती है उनको जाह्नवी भागीरथी कभी कभी अलकनंदा कई नाम है, और पाताल में जब जाती हैं तो उनका नाम होता है भोगवती। तो गंगा के ये कई सारे नाम है, गंगा सहस्र नाम भी है। और केशव कश्मीरी जो कि स्वयं निम्बरकाचार्य के विस्तार माने जाते हैं, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने गंगा शतकम का भी सृजन किया था। तो गंगा जी का बहुत सारे गुणगान है। और यहां पर भगवान लेकिन ये बता रहे हैं कि उस मंत्र की बात नहीं जो कि गंगा जी का गुणगान हो रहा है, स्वयं परम भगवान के नाम का जो उच्चारण करते हैं उनका स्पर्श जब गंगा से होता है या उनका दर्शन जब होता है तब गंगा में जितने भी पाप निक्षिप्त हो जाते हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। कलयुग में भी कभी कभी हम देखते हैं कि नदी में आग लगती है क्योंकि केमिकल्स इतने सारे हैं, लेकिन यहां पर अलग प्रकार की आग लगने की बात हो रही है। पाप जो है उनके ऊपर आग लग जाता है, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। और इसका उदाहरण हम शास्त्र से भी ले सकते हैं कि यद्यपि इसी के संदर्भ में एक और श्लोक आ रहा है, भस्मीभूतानि तान्येव वैष्णवी लिंगनेन च तृणानि सुष्टकस्थानम् दहांति पावको यथा। जिस प्रकार घास आग से जल जाता है, वैष्णवों के आलिंगन से जितने भी पाप हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। ये भी तरीका है, जोर से बोलेंगे तो सब हरि बोल बोलेंगे। हाँ, तो हे गंगे, सारी पृथ्वी लोग जो है एक तीर्थ स्थान बन जाएगा सिर्फ वैष्णवों के उपस्थित्व से, यद्यपि जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब में पाप भरे हैं पापियों के द्वारा। इसलिए भागवतम में भी बताया गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सिर्फ तीर्थ स्थान में स्नान करने से कोई फायदा नहीं। यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वभित कलत्रादिषु भौम्य ईचदीः। यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। जो देहात्म बुद्धि से बद्ध व्यक्ति त्रिधातुओं से बने कपवाद पित्त से बने हुए शरीर को आत्मा मानते हुए स्वयं जानते हुए और स्वविद कलत्रादिषु अपने संपत्ति स्वयं के शरीर को या पत्नी पुत्र कलत्र आदिषु इनको गुणगान करते हुए इनके परिपालन में अपने आप को लिप्त करते हुए भौम्य इच देहि अपने जन्मभूमि को जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी जन्मभूमि को महान मानते हुए मेरा भारत कहां सॉरी महान। सो ऐसे जो मानते हैं या फिर बताया जाता है कि भूमि के पदार्थ से बने हुए किसी वस्तु से विग्रह बनाना और उसकी पूजा करना, या उसके बाद बताया गया यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हे जित, तीर्थों में स्नान करने के लिए मात्र तीर्थ स्थानों में जो जाते हैं वो किस प्रकार है, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः, गाय अथवा गधे की तरह। यहां पे गाय को उतना पॉजिटिव तरीके से नहीं देखा जा रहा है, गाय एक जंतु भी है हालांकि महान है, तो इस दृष्टि से बताया गया। लेकिन तीर्थ बुद्धि क्या है कि किसी भी तीर्थ स्थान में जाए और सिर्फ स्नान करने से सब कुछ हो गया, लेकिन असली में तीर्थ स्थान में जाकर उस स्थल पुराण को सुनना है, वहां के इष्ट मूर्ति के इष्ट देव के बारे में सुनना है, तब जाकर वो तीर्थ यात्रा संपन्न होती है, सफल होता है। तो सिर्फ गंगा में स्नान करने से कोई फायदा नहीं ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो तीर्थ बुद्धि की बात चल रही है ये गंगा और यमुना को गिनती में नहीं लाया जा रहा है, बाकी अन्य जो नदियां हैं छोटी नदियां हैं छोटे लेवल की नदियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। गंगा और यमुना का महान
जो योगदान है वो जारी है और बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं कि उनमें स्नान करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इस श्लोक में ऐसा बताया नहीं जाएगा। जो श्रद्धा पूर्वक जो उनकी उपासना करता है तो उनका क्या कहना कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों बोलेंगे? अब सिर्फ गंगा में ही स्नान करने का इतना महत्व है तो फिर हम इस्कॉन में क्यों हैं? इस्कॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग सब? गंगा के तट पर शिफ्ट हो जाए, यमुना के तट पर शिफ्ट हो जाए, अगर यमुना मिल जाती है तो गीता महात्म्य में बता गया कि भारत आमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा के जल में स्नान करने से या गंगा जल का पान करने से व्यक्ति को यहां पे बताया गया कि पुनर्जन्म न विद्यते। भरत आमृत सर्वस्वम विष्णु वक्ताद विनिश्रुतम, तो भगवान के चरण कमल से निकला है, निकली है गंगा जी, उनमें स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा बताया जाता है, या कम से कम स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो उस गीता रूपी अमृत का क्या कहा जाए जो कि भगवान के मुखारविंद से निकल रहा है। यद्यपि अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंती, भगवान का प्रत्येक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, फिर भी जब बताते हैं कि मुंह से कुछ निकलता है और जो पैर से जो निकलता है, इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो भगवान के मुखारविंद से जो निकलती है गीता अमृत उसका महत्व ज्यादा है। उसमें स्नान करने से व्यक्ति को ज्यादा लाभ होगा, जैसे कि आप सभी भक्तों ने दिखा दिया और मैंने इस साइन को कवर कर दिया माला से ताकि 9 बजे तक खत्म ना करना पड़े। मैराथन में इतने सारे लोगों को आपने गीता पहुंचा दी, गीता अमृत पहुंचा दिया, दुग्धम गीतामृतम, तो उसको पहुंचा दिया। गीता का स्नान करने से इससे भी लाभ है, अर्थात शास्त्रों का जो संग हम करते हैं, भक्तों के संग में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसका लाभ ही कुछ और है। और गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष करके गंगा जी का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि गंगा जी गौर लीला में स्वयं उपस्थित थी, कई प्रकार के योगदान दिए, स्वयं नित्यानंद प्रभु की पुत्री थी गंगा देवी, नित्यानंद प्रभु की पुत्री के रूप में उनका नाम गंगा देवी था, और अभिराम ठाकुर सबको प्रणाम करते थे, शालिग्राम शिला या फिर उस बच्चे को प्रणाम करते थे जो अगर संभवतः शुद्ध भक्त नहीं है या एक तरीके से व्यावहारिक भाषा में फर्जी है तो बिल्कुल उसकी मृत्यु हो जाती थी या शालिग्राम शिला जो है टूट जाती थी, चूर चूर हो जाता था। लेकिन अभिराम ठाकुर ने जब गंगा देवी का जब प्रणाम किया तो बच्ची हंसती रही, मुस्कुराती रही। तो इससे स्वयं गंगा जी प्रकट हुई थी गौर लीला में भी, और गंगा जी ने तपस्या करी, विशेष भगवान से प्रार्थना करी, क्योंकि यमुना जी को आपने व्रज लीला में अपनी लीलाएं प्रदान कर दी थी, ग्वाल बालों के साथ स्नान करते थे या गोपियों के साथ जल केली करते थे, कई प्रकार के जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में योगदान दिया बलराम जी के साथ, और स्वयं कालिंदी के रूप में पत्नी भी बन गई भगवान की, इतने सारे लाभ प्राप्त हुए। लेकिन गंगा जी द्वेष नहीं कर रही थी यमुना से, द्वेष नहीं कर रही थी, ये सोच रही थी कि प्रसन्न हो रही थी, उनको भी उनको इतना अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा में योगदान देने के लिए, और एक तरीके से सोच रही थी काश मुझे भी अवसर प्राप्त होता। तो स्वयं भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको अपने इतने सारे लीलाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। केशव कश्मीरी जब सामने आए थे, दिग्विजय पंडित, हालांकि दिग्विजय पंडित अलग भी हैं, जब आए थे तो उनको बोला कि गंगा शतकम का आप सृजन करो, कुछ भी और कुछ भी बोल सकते थे ना, गंगा जी के सामने हैं, और गंगा जी में रोज उनके उनका जो चतुष्पाठी थी जिसमें जितने भी उनके छात्र थे वो सब उसी में स्नान करते थे, खेलते थे, जल के लिए करते थे, वो भी खेलते थे। और इसके अलावा गंगा का रोज 3 बार प्रणाम करते थे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। जब जगन्नाथपुरी से बंगाल जाने की बात आई तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया मेरी 2 माएं हैं, एक गंगा माता और एक सची माता, हालांकि पहले सची माता बताया था फिर गंगा माता, और महान वैष्णवी भी है गंगा माता गोस्वामिनी,
वो तो बाद में गौर महाप्रभु के अप्राकट्य के बाद बारे बाद में आई थी, और स्वयं गंगा जी उनको लेकर जगन्नाथ जी के चरण कमलों तक पहुंचा दी थी। गंगा जी ने ऐसा किया था। और स्वयं जयदेव गोस्वामी जब सेवा कर रहे थे भगवान के, राधा माधव के ठीक से सेवा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके प्रौढ़ अवस्था हो गई थी, तब गंगा जी स्वयं उनके पास आई थी। तो गंगा जी का बहुत महान योगदान है गौर लीला में भी और गौड़ी वैष्णव के जीवन में। इससे भी महान एक बात है, एक श्लोक पढ़ता हूं मैं, ये पॉइंट्स कवर हो गए, सॉरी। हाँ, ये पॉइंट भी है कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन भी किया था गंगा के तट पे, और जब जाना था चांद काजी के पास, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसमें भी कई सारे लोग गंगा जी का पार करके गए थे, गंगा जी चलेंगी जोनों, और पूरी जाने के लिए भी गंगा में स्नान करने के बाद उन्होंने संन्यास, पहले कटवा जो है गंगा के तट पे है वहीं पर गंगा में स्नान करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था केशव भारती महाराज से, और फिर पुरी गए थे। पुरी में भी गंगा जी हैं, और गंगा जी इतने व्याकुल हो गई थी कि गंगा सागर में मिलने के बाद पुरी की तरफ जाएं ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में योगदान दूं, और इतनी व्याकुल थी गंगा जी। तो हर प्रकार से गंगा जी का गौरांग महाप्रभु और उनके भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भी हमें इन श्लोकों को, जितने भी हम भागवत में पढ़ रहे हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि गौड़ी वैष्णवों के लिए इसका क्या महत्व है, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए और इससे हमें कनेक्ट करना चाहिए। और आगे बताया गया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग में मैं दो रूप में आता हूं, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हया साक्षात जल ब्रह्म सम। भगवान जगन्नाथ जो कि परम भगवान है, दारु ब्रह्म है, और एक है गंगा मैया जो कि परम भगवान स्वयं है जो कि जल ब्रह्म है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जल ब्रह्म है वो गंगा जी के रूप में। और आगे भी भगवत गीता में भी भगवान ये बता रहे हैं कि उसके पहले एक और पॉइंट बताता हूं। हमारा आंदोलन शुरू ही हुआ एक तरीके से, गौड़ीय वैष्णवों का ये संप्रदाय प्रारंभ ही हुआ गंगा के तट पे जब चंद्र ग्रहण था, जैसे कल भी चंद्र ग्रहण था गंगा तट पे, जब चंद्र ग्रहण था स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन सकलंक चंद्र नहीं कोनो प्रयोजन, तभी भी चंद्र ग्रहण था। और क्योंकि चंद्र ग्रहण था तो असंख्य लोग म्लेच्छो यावनों को भी गिनती में लेकर सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे और हरि हरि बोल रहे थे। दो तीन दिन से प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा हूं, इसलिए अपने आप निकल गया, इस ग्रेस मोहन प्रभु का लेक्चर कल था तो हरि हरि का इंपैक्ट अभी भी है, तो हरि हरि ऐसा बोलते थे। तो ये गंगा का महत्व है कि वहीं से ये संकीर्तन आंदोलन भी वहीं से प्रारंभ हुआ, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय पर चंद्र ग्रहण जब हुआ था तो सभी गंगा में स्नान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और यद्यपि भक्तों के दर्शन से, स्नान से, स्पर्श से गंगा में धुले हुए पाप भी धुल जाते हैं या जल जाते हैं, फिर भी ताहते एक ही जो है दिवसे उपाय तारा अर्ध गंगार नैवेद्य लगी जाए। ये कौन बोलता है कि मैं अपने किसके बारे में बताया गया कि वो अपने जीवन के 50% जितना भी वेतन है वो गंगा की सेवा में लगाते थे, कौन? कोलवेच श्रीधर। तो कोलवेच श्रीधर ऐसे ही करते थे, 50% वो क्यों लगाते, कुछ अगर लाभ नहीं मिल रहा भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते, रात भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और गंगा जी के लिए 50% अपना जितना भी यहां पे बताया गया उपाय, जो भी उनको मिलता था वेतन या जो बेचने से उनको जो आमदनी मिलती थी उसको लगाते थे गंगा जी की उपासना में, पूजा में। और बताया जाता है कि पुंडरीक विद्यानिधि भी ऐसे करते थे, रात रात को किसी को पता नहीं था गंगा जी में जाकर गंगा जी की उपासना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे वहां पर। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जे गंगा पूजा तुम्हें अमितार पिता सत्य तुम्हारे कहिले जय कथा। चैतन्य भागवत में बताया गया कि जिस गंगा की तुम पूजा कर रहे हो मैं उसका बाप हूं, एक तरीके से ही बताया, मैं उसका भी पिता हूं, पिता सत्य, तुम उनकी पूजा क्यों करो, मेरी पूजा करो। और ये प्रेममय आदान प्रदान है चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त कौलवचर श्रीधर के बीच में, कि वैसे भी कुछ कमाई नहीं होती थी लेकिन जितनी भी कमाई होती थी वो केले के जितने भी टहनियां थी, छिलके थे, फूल थे, उन सबको बेचते थे, पत्ते थे, और कोला बेचा मतलब केला, उसको भी छीन लेते थे, उसको 50% कॉस्ट में देते थे। वैसे ही कुछ नहीं मिलता था क्योंकि उतनी विरल वस्तु नहीं थी, सबके घर में केले का पेड़ होता था बंगाल में, तो बेचने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलता था, कुछ फिर भी चला लेते थे। तो तुम लोगों ने यह भी बताया कि तुम गंगा की पूजा में 50% क्यों लगा रहे हो, ये पूजा सब बंद करो, कुछ पैसा कमाओ और पूंजी लगाओ और उसके बाद आगे तुम अच्छा कर सकते हो, और लोगों की सेवा में लगा सकते हो, अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ा सकते हो, यू कैन बिकम अ बिजनेस मैग्नेट। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे नहीं करना है। फिर बोले ठीक है 25% लगाओ, करने की जरूरत नहीं है। तुमने बताया नहीं 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 मैं 50% ही लगाऊंगा, क्या पता अगर मैं 50% देना बंद कर दूं मुझे लाभ प्राप्त होगा कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं ये 50% गंगा जी की सेवा में लगाऊं और भगवान का नाम लेता रहूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर तुम्हारे कपड़े तो फटे हुए हैं लेकिन मैं नंगा तो नहीं हूं, पर तुम्हारे घर पे छत भी नहीं है, छत है उसमें छेद है, उससे तो बहुत सारा पानी बहता है, बहुत सारा नहीं कुछ बहता है, फिर मैं रह लूंगा, यत्रिच्छा लाभ संतुष्ट है, भक्त का लक्षण। और एक प्रकार से भगवान का नाम लेने में उनको सहयोग भी मिल रहा था क्योंकि गंगा जी की पूजा करते थे रोज वो, और गंगा जी क्योंकि भगवान के चरण कमल से स्वयं निकली थी इसलिए उनकी उपासना करने से लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो पांचवें स्कंद में भी हे तो श्रोतसाम अस्मि जानवी, भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं दसवें अध्याय में कि बहने वाली जितने भी हैं वस्तुएं हैं उनमें मैं गंगा हूं जानवी। तो भगवान संपुष्ट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, भगवान स्वयं भगवत गीता में भी बता रहे हैं, दोनों रूप में भगवान ने एक कंक्लूशन दिया है। तो अभी 10 मिनट है, 5 मिनट में कुछ प्रसंग बताना चाहूंगा जो कि पांचवे स्कंद में भी इसका वर्णन आया है जो कि अधिकतर गद्य रूप में है। उससे पहले एक बात, अद्वैताचार्य ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को धरती पे आवाहन किया था, आह्वान भी दिया था, किस लिए कैसे, उन्होंने गंगा जल तुलसी दल और शालिग्राम शिला की पूजा से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया धरातल पर, उस पे भी गंगा जी का हाथ है, या पता नहीं हाथ है क्या बोलेंगे, गंगा जी है। तो गंगा जी हर प्रकार से हमारे इस आंदोलन से और वैष्णव के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब पांचवें स्कंद से कुछ थोड़ा जटिल गद्य है क्योंकि पांचवें स्कंद में भागवतम पद्य रूप में नहीं, अधिक बहुत सारा उसमें गद्य रूप में है। श्री सुखदेव गोस्वामी कुछ बता रहे हैं, पहले वो पढ़ेंगे फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जस्ट मेक दिस लिटिल बिगर। तत्र भगवत साक्षात यज्ञलिंगस्य विष्णोर विक्रमतो वाम पदांगुष्ठ पादांगुष्ठ नख निर्भिन्नोर द्वांद कटाह विवरेनांत प्रविष्टया बाह्य जलधारा तच्चरण पंकजावने जनारुण किंजल कोपरांजिता अखिल जगदघ मला पाहो पस पर्शना माला साक्षात भगवत पादित अनुपलक्षिता वाचोपिद्य मानाति महता कालेन युग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धानि अवतार यत तद विष्णु पदम आहुहु। सुखदेव गोस्वामी ने बताया, प्रिय राजन, भगवान विष्णु जो कि सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, बलि महाराज के यज्ञशाला में वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे और जब तीन पग उन्होंने धरती मांगी थी तो उसमें दूसरे पद से उन्होंने ब्रह्मांड के आवरण को चीर कर लिया अपने बाएं पैर के अंगूठे से, और जो कारण सागर है उसने प्रवेश किया इस ब्रह्मांड में और भगवान के अंगूठे को उसने अभिषेक किया और वो है गंगा जी। और कुमकुम से मिश्रित होकर हमने जो बताया पिंकिश, पिंकिश को क्या गुलाबी बोलते हैं पता नहीं क्या कलर, उस रंग की निकली। और क्योंकि परम भगवान के चरण कमल से निकली है इसलिए उन्हें ये क्षमता है कि लोगों के पापों को वो नाश कर सकती है। गंगा जी में अपने स्वयं अपनी कोई क्षमता नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि भगवान के स्पर्श हुआ है उनके चरण कमलों का, इसलिए वो कार्य कर पा रहे हैं जो वो कर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में भी, जितने भी लोग देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं वो मात्र मेरी ही सेवा कर रहे हैं असली में, लेकिन अविधि पूर्वक तरीके से। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जितने भी देवताओं की उपासना भी करते हैं सब केशव के पास ही जाता है, तो फिर नाक को ऐसे क्यों छुए, सीधा छुए। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि तात्पर्य में पूरा कोर्स बता रहे हैं, उसकी जो श्रृंखला है गंगा जी किस प्रकार स्वर्गलोक से, तो भगीरथ ने नवम स्कंद में वर्णन आया है, स्वर्गलोक से भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर ला दिया, लेकिन स्वर्गलोक तक कैसे पहुंची उसका वर्णन है पंचम स्कंद में। स्वर ध्वनि गंगा जी का एक नाम है, गाम गमयति इति गंगा, आकाश मार्ग से प्रयाण करके पहुंची थी स्वर्गलोक से, इसलिए उनका नाम गंगा है, गाम मतलब आकाश, गाम गमयति इति गंगा। और बताया गया है कि सर्वप्रथम भगवान के चरण कमल से निकली थी और वहां से वो जल जो है गंगा जी पहुंची ध्रुवलोक में, और क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से निकली थी इसलिए उनका नाम है विष्णुपादी, कई लोग ब्रह्मपादी भी बोलते हैं क्योंकि भगवान तो ब्रह्म ही है। और उसके बाद ध्रुवलोक में पहुंची और ध्रुवलोक में स्वयं ध्रुव महाराज ने अपने सिर पे धारण किया, इसलिए उनका भी गुणगान किया जाता है कि ध्रुवलोक जो है विष्णुपाद है, जय ओम विष्णुपाद। तो ध्रुवलोक पे पहुंची थी और ध्रुवलोक से पहुंचने के बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जी जो है कारण सागर है भगवान के चरण कमलों को धोते हुए, पहले वो रूप है, उसके बाद गंगा जी होती है, गंगा जी फिर वहां से ध्रुवलोक पहुंचती है, ध्रुवलोक के बाद माउंट सुमेरु पर्वत के ऊपर पहुंचती है। और पहुंचने के पहले यह भी बताया जाता है कि आकाश मार्गे न कई सारे विशेष यान हैं जिनके द्वारा जल लिया जाता है, गंगा जी सेलेस्टियल एयरप्लेन्स जो बोलते हैं उनके मार्ग से आकाश मार्ग से पहुंचती है, और सुमेरु पर्वत से फिर आगे अन्य हिमालय में पहुंचती है। और ये सुमेरु पर्वत जो है यहां पे बताया गया कि विशेष एयरप्लेन्स जो हैं ध्रुवलोक एंड देन द सेवन प्लैनेट्स, और ध्रुवलोक से पहले पहुंचती है तपोलोक में जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, सप्तऋषि जिनका लोक है, मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ, अलग अलग कल्प में अलग अलग ऋषि हैं, तो सप्तऋषि जो हैं उनके मंडल में पहुंचते हैं, उनके लोक में पहुंचते हैं, और वहां से आकाश मार्गेणा अन्य अन्य जगह में पहुंचती हैं, हिमालय की चोटी पर पहुंचती हैं, फिर वहां से आगे उनकी धाराएं और भी बढ़ती हैं, चार दिशाओं में बढ़ती हैं, पूरब में सीता के नाम पर, फिर पश्चिम में अलकनंदा के रूप में, उत्तर में चाक्षु के रूप में, और दक्षिण की तरफ भद्रा के रूप में, इस प्रकार से बहाव होती है और अंततः गत्वा बंगाल सागर में या बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं, जिसको गंगा सागर बताया जाता है। मकर संक्रांति अभी भी हुआ था, उसमें अभी भी हजारों लाखों लोग उसमें स्नान करते हैं और प्रयाग में स्नान करते हैं, वहां भी स्नान करते हैं, गंगा सागर में भी जाकर, ताकि उनको लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है, और ये बोल के मैं विराम दूंगा, ये भागवतम का 12वें स्कंद का एक श्लोक है, इसको बोल के मैं विराम देना चाहूंगा। वो श्लोक है, एक सेकंड, विल टेक क्वेश्चंस और विल नॉट टेक क्वेश्चंस। प्रभु जी, प्रभु जी, ओके, क्योंकि सवाल वही है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीम तत्पाद सलिलम यथा। भगवान के चरण कमल से निकलती हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण के लीलाओं के बारे में प्रश्न करता है, वासुदेव कथा प्रश्न, तीन प्रकार के लोगों को लाभ प्राप्त होता है, जो प्रचारक है अथवा वक्ता है, जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासा करता है, अथवा या सामान्य जनता है जो कि इसका श्रवण करते हैं, तीनों लोगों को लाभ प्राप्त होता है वासुदेव कथा प्रश्न करने से। हरे कृष्णा। यस, माफ करें, मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है तो थोड़ी समस्याएं हो गई आज हिंदी में।
तो जैसे यहाँ प्रसंग आता है कि जो गंगा माता में स्नान करते हैं उनमें जो पाप फल इकट्ठे होते हैं, जब वैष्णवगण स्नान करते हैं तब वो उनसे मुक्त होते हैं, तो परंतु वैष्णव के पास भी ये शक्ति वहीं से आती है जो, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण से संबंध होता है, भगवान कृष्ण के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, तो ये शक्ति तो गंगा माता के पास स्वयं भी है कि उनके चरण कमलों से निकली है, तो इस प्रकार का उन्हें अंतर,
गंगा जी को भी अपने आप में क्षमता रह जानी चाहिए थी, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और
बाह्य रूप से दिखता है कि शायद उनका एक ज्यादा अंतरंग संबंध है भगवान कृष्ण से, ये ज्यादा शक्तिशाली है, इतने करीबी, तो ऐसा क्यों?
You want to answer that question? No, because it's important. You can have a better answer than me. प्रभु का प्रश्न ये है कि गंगा जी का तो और निकटतम संबंध है भगवान से, क्योंकि वो चरण कमल से स्वयं एक प्रकार से प्रकट हुई थी भगवान के, वामन देव के, तो ऐसा क्यों है कि उनके भक्त जिनकी भी शक्ति अथवा क्षमता प्राप्त होती है भगवान स्वयं से, उनमें इतनी अधिक क्षमता कैसे है, कैसे आ गई जिससे कि गंगा स्नान के फलस्वरूप जो पाप धुले जाते हैं उनको भी भक्त जला सकते हैं? वो उसका उत्तर ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार दिया गया, क्योंकि मंत्रोपासक हैं वो, क्योंकि मंत्रोपासक हैं। गंगा जी तो भगवान के चरण कमल से निकल चुकी है, लेकिन मंत्रोपासना के द्वारा भगवान के भक्त निरंतर भगवान के संग में हैं, तो इसलिए उनमें यह क्षमता है कि जो आदि रूप में यद्यपि भगवान के चरण कमल से निकली थी गंगा जी, ऐसा नहीं है कि गंगा जी भी हरिनाम नहीं करती, लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि क्योंकि भगवान के मंत्रोपासक जो हैं वो निरंतर, क्योंकि कीर्तनीय सदा हरि के रूप में भगवान से निरंतर संग कर रहे हैं, ये जो पाप जो जलाए जा रहे हैं वो भगवान ही जला रहे हैं, क्योंकि मंत्र के रूप में भगवान उपस्थित हैं। काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होले सर्व जगत अनिस्तार, और क्योंकि ये नाम है जो इन पापों को जला रही है, और क्योंकि भक्त जो है भगवान के नाम वितरण करते रहते हैं, इस वजह से उनको इस पाप जलाने की क्षमता उनमें अधिक रहती है। और हमें एक प्रयोग भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि गंगा की महानता इससे कम हो जाती है, ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भगवान के मंत्रोपासक भक्त जो हैं सोच सकते हैं, जो कि सामान्य जीव जो कि कारण सागर से उद्भूत नहीं है, सामान्य जीव जो कि भगवान के मंत्र की उपासना करता है उसकी इतनी क्षमता प्राप्त होती है कि वो पाप को भी जला सकता है, तो फिर भगवान का ही महत्व उसे बढ़ता है। क्योंकि सामान्य जीव जो कि भगवान के अंगूठे से थोड़ी प्रकट हुआ था लेकिन जो जीव जो है, बद्ध जीव भी हैं, जो कि साधना सिद्ध अगर हो जाता है या कृपा सिद्ध कोई भी है, सिद्ध व्यक्ति जो है या साधक भी है, मंत्रोपासक भी है, तो उसमें एक क्षमता होती है कि पापों को किसी न किसी मात्रा में वो जला सके, क्योंकि भगवान का प्रत्यक्ष संग उसके साथ है, हमेशा रहता है। भगवान मंत्र रूप में, नाम रूप में उसके साथ उपस्थित हैं। इस वजह से उनमें यह क्षमता होती है कि उन पापों को भी जला डालें जो कि गंगा में धुली गई हैं। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। एनीथिंग मोर टू ऐड ऑन दैट? डज दैट, यू डोंट सीम टू बी सैटिस्फाइड? बट इस, हाँ यस, हाँ, सो टू कंक्लूड, द अंडरस्टैंडिंग शुड बी दैट यहां पे बताया गया कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजाम, कर्मों का जो है पूरा नाश जो है भक्ति से ही हो सकता है, और भक्ति में आगे बढ़ने का सही तरीका है मंत्रोपासना। गंगा स्नान करना कलयुग के लिए युग धर्म नहीं है, कलयुग के लिए युग धर्म है कलो तद हरि कीर्तनात्। क्योंकि सिर्फ गंगा स्नान करने से अगर पाप सारे धुल जाते हैं और गंगा के भी पाप, गंगा में भी पाप नहीं रहते, तो फिर कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन नहीं होता, गंगा जल स्नान होता। और क्योंकि कलयुग में युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, हरिनाम संकीर्तन, इसलिए हरिनाम का महत्व उसे ज्यादा ही होना चाहिए, स्वाभाविक है। और इस वजह से यह बताया गया कि कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति बजम, कर्म जो है भक्ति से ही नष्ट होते हैं, और भक्ति का मूल कारण क्या है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, और साधु संग से ही कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। और वो साधु कौन है? वो साधु हैं मंत्रोपासक। वो मंत्रोपासक साधु जो हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से, भक्ति का आधार है हरे कृष्ण महामंत्र, उनका संग है भक्ति का जन्म स्थान, कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। और वो हरिनाम का संग लेने से, निरंतर संग लेने से कृष्ण को और दे सकते हैं, और कृष्ण को देने के वजह से पापों को जला सकते हैं। इस वजह से उनका संग करने में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है इसकी तुलना में कि सिर्फ गंगा जल में स्नान करें। गंगा जल में स्नान करने से वो एक तरीके से पूरक है, इट्स लाइक अ कैटलिस्ट, हरिनाम लेने में वो सहायक है, लेकिन हरिनाम नहीं है। गंगा जल लेने से मंत्रोपासक का संग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि चेतना शुद्ध होती है। भगवान श्रील प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि चेतना की शुद्धि होती है गंगा जल के स्नान करने से। व्यक्ति, इट इज लाइक वर्णाश्रम धर्म, क्रमशः शुद्धिकरण होता है व्यक्ति की चेतना। गंगा स्नान करने से व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है, जिससे कि वो भक्तों का संग कर सकता है, जिससे कि वो हरिनाम का संग कर सकता है और हरिनाम ले भी सकता है। इस वजह से उसके पापों का नष्ट होता है असली में। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हेल्थ साधना सेवा। इस गोलोक जो धाम में आरोहण, गोलोक आरोहण खंड में मैंने देखा था, ये डिटेल्स मैंने नहीं पढ़ा था, हो सकता है, मुझे पता नहीं उसमें। और भगीरथ जब लाए थे तो आपको पता भी होगा, भगीरथ को सामने गंगा जी ने दो कंडीशन रखे थे कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक पुरुष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरी धारा को बह सके, उसको पकड़ सके, उसको सह सके एक तरीके से, नहीं तो सीधा पाताल तक चली जाएगी, रसातल को चीरते हुए नीचे लोकों में चली जाएगी। और दूसरा ये है कि मेरे में जो पाप जो धुलेंगे उनका क्या होगा, तो ऐसा कोई उपाय होना चाहिए उसके लिए। तो भगीरथ ने बताया कि आशुतोष शिवजी का उन्होंने जो है शिवजी से प्रार्थना करी, शिवजी ने मान लिया, इसलिए उनका नाम गंगाधर भी बताते हैं, गंगा को धारण कर लिया। और फिर भगीरथ ने यही बताया कि भक्तों के संग से, जो भगवान के भक्त हैं उनके संग से जो है ये पाप धुलेंगे उनके दर्शन मात्र से। ये बात भाई ब्रह्मवैवर्त पुराण से भी टैली होता है ये बात। तो गंगा जी को ये दो कंडीशन पूरे हुए थे इसलिए वो आई थी। तो गंगा जी को भी पता था कि हर क्षमता इज नॉट एज मच एज द प्योर डिवोटीज हु आर एबल टू क्लेंस दिस सिंस। हालांकि अपने वो शुद्ध भक्त हैं। यस, आई डोंट नो,
यमुना जी का वैसे ये बताया जाता है कि भौतिक जगत में तो बताया जाता है कि सूर्य देवता के पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, यम और यमुना दोनों, सूर्य और फिर छाया संज्ञा, दो पत्नियां थी सूर्यदेव की, और उनके संतान के रूप में यम और यमी, फिर यमुना, यमी बोलते हैं यमुना भी बोलते हैं, उस रूप में प्रकट हुई थी। वैसे तो ये भी बताया जाता है कि गोलोक धाम में स्वयं उपस्थित थी और किसी अंतरंग लीला के कारणवश उनको भौतिक जगत में आना पड़ा कालिंदी के रूप में। और यहाँ तक बताया गया कि गंगा और सरस्वती भी, कुछ पुराणों में वर्णन है कि उनके बीच में स्पर्धा हो गई थी और लक्ष्मी जी ने उसका निवारण किया, तो फिर लक्ष्मी जी को भगवान ने स्वीकार किया और गंगा और सरस्वती को बाकी देवताओं को प्रदान कर दिया, और गंगा सरस्वती ने एक दूसरे को स्नान शाप दे दिया कि नदी बन जाएं, तो वो भी वर्णन आता है। यमुना जी के बारे में यही है कि गोलोक धाम में थी स्वयं और उनको आना पड़ा किसी कारणवश, जो कि मैं समझाने के लिए सक्षम नहीं हूं, बट शी इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन द मेटीरियल वर्ल्ड शी अपीयर्ड एज सूर्यस डॉटर, सूर्यदेव्स डॉटर। I don't know, I have to just speculate on the Vyasasan. There is nothing from Shastra that I know as an answer to this. I can speculate on the basis of what I have studied, which we can do separately. I will feel unqualified to answer this question. Ye to bataya ja sakta hai ki because it is the Karan Sagar, then it is spiritual. It is from the Brahman area, Brahman Pradesh, Brahman. To isliye wo adhyatmik hai, aur Ganga ji bhi adhyatmik hi hai, pehle se hi adhyatmik hai. But it is like सोने पे सुहागा, as they say in Hindi. भगवान के चरण कमल से आए थे इसलिए she became more potent. She was सक्षम, then she became सक्षम तर, and then सक्षम तम when मंत्रोपासकास came. सक्षम तर when the Lord's lotus feet were washed. This is my understanding. I'm sorry for not being adequate in my answers. कोई माता जी हैव एनी क्वेश्चंस? माता जी वैष्णवी कोई क्वेश्चंस? हाँ, मैंने अभी भी ये बताया था कि कलयुग का युग धर्म गंगा स्नान नहीं है, कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण है। कि यहाँ पे ये भी बताया गया इति षोडश का नाम कलि कलमश नाशनम नाता परतर उपाय सर्व विदेश दृश्यते। गंगा स्नान भी वेदों में वर्णित है, तो नाता परतरो इससे बढ़कर और कुछ उपाय नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। तो गंगा स्नान जो है उसके लिए एक कैटलिस्ट है, एक पूरक है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति को थोड़ा उत्साह बढ़ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही व्यक्ति अंततः भगवत धाम पहुंच सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। गंगा स्नान करने से लाभ जरूर मिलता है, वो कैटलिस्ट बन जाता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए, गंगा मैया की जाए।